समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षता, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, एज ऑलवेज वी ब्रिंग टू यू एन अमैल्गमेशन ऑफ नॉट जस्ट न्यूज बट ऑफ कोर्स सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। बिकॉज आकर्षता, बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं ना कि हमारे हार्ड न्यूज नहीं होती, हमारे मेन बुलेटिन का हिस्सा नहीं बनती। सो दिस इज द शो इन विच kind of, you know, get those stories to our listeners ताकि उनको भी पता चले कि वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि खास खबरों में सो कॉल्ड नहीं शुमार है उनका, बट स्टिल दे आर वर्थ शेयरिंग।
हाँ, जो हमारे चेहरे पे मुस्कान लाती हैं और कुछ पॉजिटिविटी लाती हैं इतने ढेर सारे संघर्ष भरे खबरों के बीच, इतनी ढेर सारी अनिश्चितताओं के बीच।
एब्सोल्युटली आकर्षता, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो इज डेडिकेटेड टू द पर्सनैलिटीज हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑल्सो हु either have their birth, death, anniversaries or birthdays today. All of that in the next half an hour roughly. Let's start with the headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। कहा, यह हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, लघु तथा मध्यम उद्योगों और युवाओं के लिए कई नए अवसर खोलेगा।
इंडिगो फ्लाइट मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट ड्यू टू सस्पेक्टेड इंजन फेलियर।
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जेन जी के विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
यमन हाउसी रेबल्स एंटर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट विद फर्स्ट मिसाइल अटैक ऑन इजराइल।
और आईपीएल क्रिकेट का 19वां संस्करण आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा।
And Akarshita, we start our show as always with our special segment Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. And March ka mahina hai, Akarshita, the most important day that stands out of course is 8th of March, you know, International Women's Day. So we in our show over the course of many days have tried to probably look at different fields in which women have made their marks. Lekin ek field jahan pe auraton ki keh sakte hain ki bahut bada yogdan hai, but they are the unsung heroes. Heroes or heroines of that particular field. Yes, we are talking about empowering women farmers. That is the role of women and how they should be empowered, especially in the field of agriculture. Well, agriculture has long been the backbone of our country's economy, supporting not just food security, but also livelihoods and rural development. For women in rural areas, agriculture and allied sectors are the primary source of livelihood, with 80% of rural women being engaged in these sectors. Of these, 33% are agricultural laborers and 48% are self-employed farmers. UN has designated 2026 as the International Year of the Woman Farmer, that is IYWF 2026, in recognition of the vital and indispensable role of women in global agriculture. Women farmers constitute a critical component of the agricultural sector, which is increasingly characterized by substantial female participation.
सायरा, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या आप किसी एक किसान का नाम बताएंगी?
एक हमारे गांव में किसान है, किशन सिंह। आप
जी ओके, तो आप देखिए, आपने एक पुरुष किसान का नाम बताया, लेकिन 80% से ज्यादा महिलाएं खेतों में काम करती हैं, बुआई करती हैं, जुताई करती हैं, बहुत ढेर सारे। लेकिन हम किसी भी किसान का जब नाम लेते हैं तो एक महिला किसान हमारे दिमाग में आता ही नहीं।
दैट्स वेरी ट्रू। इनफैक्ट आपने भी मुझे सोचने में मजबूर कर दिया।
तो इसी को साथ लेकर बात करते हैं कि किस तरीके से भारतीय कृषि की रीढ़ माने जाने वाली महिला किसानों का सशक्तिकरण न केवल सामाजिक न्याय के लिए बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। जैसा कि हमने बात की कि वर्तमान में लगभग 80% ग्रामीण महिलाएं कृषि कार्यों में संलग्न हैं, जो बुवाई से लेकर कटाई के बाद के प्रबंधन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष में महिलाओं के योगदान को उजागर करने के साथ साथ भूमि संसाधनों, प्रौद्योगिकी, वित्त और बाजारों तक उनकी समान पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस वर्ष का उद्देश्य सरकारों, विकास भागीदारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को एकजुट करना है, ताकि ऐसी समावेशी नीतियों और लक्षित कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके जो दुनिया भर की महिला किसानों की दृश्यता, पहचान और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ा सके। और जैसा कि हम बात करें, बहुत अगर हम दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग में भी हम देखते हैं तो वो महिला किसान ही रहती हैं जो चाय की पत्तियां तोड़ती रहती हैं। और अक्सर आप पंजाब में निकले, आप नॉर्थ ईस्ट में निकले, आप पूरे देश के किसी भी राज्य में देखें तो आपको खेतों में अक्सर महिलाएं दिखी जाती हैं गुनगुनाते हुए, कटाई करते हुए, और बहुत बड़ा प्रतिशत है।
यू कैन इवन इनफैक्ट द पिक्चर ऑफ अ वुमन फार्मर व्हेन इट कम्स टू माइंड, देन इवन कितनी जगह, बिकॉज द मदर इज द प्राइमरी केयर गिवर टू अ स्मॉल चाइल्ड, तो कितनी बार हमने देखा है कि जो वुमन फार्मर्स होती हैं, फीमेल फार्मर्स, दे एक्चुअली यू नो टाई देयर किड्स टू देयर
पहाड़ी इलाकों में
भी, या कहीं पे भी अपने पीठ पे बच्चों को बांध लेती हैं और फिर काम करती हैं। So imagine that's a quite a task. I mean, I don't think so that we can even imagine के कैसे करती हैं, but I mean that's salute to them.
यही उनका सशक्तिकरण है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए सिचुएशंस, परिस्थितियां बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं।
Right, that's true. In fact, though we named the segment empowering women farmers and we call it empowerment, but अगर मुझसे पर्सनल मेरा व्यू पूछा जाए ना आकर्षिता, मुझे वर्ड empowerment से ही थोड़ा सा परहेज होता है, बिकॉज द वर्ड, द मोमेंट यू यूज द वर्ड एम्पावर, दैट मीन्स समबडी एल्स हैज मोर पावर, हु इज गिविंग द पावर टू समबडी एल्स,
इट इज नॉट इक्वल,
इट्स नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल, दैट्स ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म, बट व्हेन वी से एम्पावर, दैट मीन्स वी आर गिविंग द अदर एजेंसी द पावर टू गिव दैट पावर टू समबडी एल्स, यू नो, सो दैट इटसेल्फ इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक, वी कैन से, बट येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर एवरी फीमेल एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, because we all know that it's the backbone of our economy. We are mainly are still an agrarian society. So it's very important that we give the right environment to the female workers who are working and toiling so hard in the fields.
और सारा कितनी बड़ी बात है, खेतों में भी वही काम कर रही हैं महिलाएं और घर पे आपको रोटी भी बनाकर पकाकर वही महिलाएं दे रही हैं।
yes.
तो एक तरीके से देखा जाए तो घर और बाहर दोनों को जो संभालने का जो जिम्मा है वो एक महिला बहुत बेहतर तरीके से निभाती है।
दैट्स राइट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई थिंक गॉड हैज प्रॉब्ली ब्लेस्ड वुमेन विद दिस सुपर पावर दैट यू नो दे कैन मैनेज, वेदर यू सी वुमेन इन द अर्बन एरियाज और इन द रूरल एरियाज, इवन यू नो पीपल हु आर वर्किंग इन अर्बन सिटीज, they are looking after their kids also and somehow they are managing everything then coming to office. तो कई बार होता है ना कि हमारे female colleagues कहते हैं कि अरे ये तो बहुत easy, but they don't understand that you know sometimes we after work sometimes we don't even have the time to change as well, we just go directly wash our hands, go to the kitchen
and then they call us emotional because कहीं ना कहीं इतनी जद्दोजहद और इतनी भागा दौड़ी के बीच कहीं ना कहीं वो emotional quotient तो हमें चाहिए ही होता है।
emotional होना कोई कमजोरी की बात नहीं, गेटिंग ओवरवेल्ड बाई इमोशंस, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसके लिए वो मतलब थोड़े से प्रॉब्लम की बात होती है, बट इमोशनल होना चाहे मर्द हो चाहे औरत हो वो मेरे ख्याल से कहीं भी एक कमी नहीं है,
जो ये समझा जाता है समाज में।
आई मीन सोसाइटी हैज क्रिएटेड दीज फॉल्स नोशंस दैट मेन शुड नॉट क्राई, यू नो आई हैव सीन इन माई हाउस मेन क्राइंग गेटिंग इमोशनल एंड दैट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस एट ऑल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन टू बी सेंसिटिव इनफ टू शो देयर इमोशंस ऑल्सो। So well, coming back to the topic, the UN's declaration of 2026 as the International Year of Women Farmers presents a significant opportunity to advance policy reforms, enhance awareness, strengthen global cooperation and mobilize resources to support women in agriculture.
और अगर हम बात करें सायरा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है, जो भारत सरकार है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दे रही है या मदद कर रही है, तो बहुत ढेर सारी ऐसी वित्तीय सहायता है, ऋण है, योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत कुल लाभ का लगभग 25% हिस्सा जो है वो महिला लाभार्थियों को मिलता है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, इससे महिला किसानों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर यह केंद्रित है और अब तक इससे 35.98 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। और हमने ड्रोन दीदी आजकल सुना है बड़ा कि किस तरीके से महिला जो किसान है वो फर्टिलाइजर्स जो है वो एक ड्रोन के माध्यम से जो है उसका उपयोग कर रही हैं।
That's right, and we'll come to ड्रोन दीदी प्रोग्राम as well, but just tell our listeners that recently a conference was held in New Delhi and that was a global conference on women in agri food systems and it centered on driving progress and attaining new heights, which underscored India's commitment to integrating women more effectively into the agricultural into agricultural development. And since you were talking about the Drone Didi program, yes, it's a very novel initiative. The National Beekeeping and Honey Mission and the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission also strengthen women's participation by promoting technology adoption, skill development and livelihood diversification. Together, these initiatives strengthen women's participation in the agricultural value chain by improving infrastructure, enhancing market linkages and supporting efficient post-harvest management.
और सायरा अगर बात करें ऋण की, तो जिस तरीके से पहले जो महिला थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत गांव में चले हैं, जिस तरीके से उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाती है और वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं क्षेत्रों में जो महिला है उनके नाम पे प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत डिफिकल्टी होती है कोई नया काम शुरू करने में।
That's
लेकिन
right.
जो सरकार की योजनाएं हैं, और जैसे हमने नमो ड्रोन दीदी योजना की बात की कि और कुछ लाख तक का उनको जो है उनको सहायता दी जाती है, तो इससे भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, उनका कुछ अपना वो बिल्ड कर रही हैं एक तरीके से, अपनी खेती बाड़ी होना और अपनी जमीन जायदाद होना बड़ी बात है, जो कि महिलाओं के पास पहले नहीं था। और एक तरीके से महिला अनुकूल उपकरण भी आजकल आ गए हैं, जैसे ICAR, CIWA जैसे संस्थान हैं जो श्रम साध्य कार्यों को करने के लिए विशेष कृषि मशीनरी और उपकरण का विकसित कर रहे हैं, जैसे नारियल है उसके छिलके को निकालना, तो बहुत ढेर सारे ऐसे हाथ वाले काम है जो महिलाएं करती थी पहले, लेकिन अब उसके लिए भी मशीन्स डेवलप हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सहायता के लिए भी सरकार आगे आ रही है, उनको ऋण सहायता दे रही है और कहीं ना कहीं वो भी अपने पैर पे खड़े हो सके। और आज अगर हम देखते हैं हर क्षेत्र में, एक सिर्फ कृषि की बात ना करें, अगर बस ड्राइवर तक की बात करें, एक ऑटो रिक्शा की बात करें, महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
Absolutely, Akarshita. The growth of women-led farmer producer organization or FPOs and capacity building efforts through Krishi Vigyan Kendra and Indian Council of Agricultural Research, they are further enabling women to boost productivity, diversify livelihoods and engage more actively in decision making. Enhancing women's skills, visibility and leadership in agriculture in alignment with the vision of International Year of the Woman Farmer, it will strengthen rural livelihoods and resilience while making a substantial contribution to national food and nutrition security.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए क्या विशेष है।
And we'll start our journey of Parikrama from down south in Hyderabad, where the National AIDS Control Organization or NACO held a special workshop called Suraksha Sankalp Karyashala in Hyderabad on 25th of March as part of its national program Mission AIDS Suraksha to strengthen the fight against HIV at the district level. The workshop brought together national, state and district leaders to speed up targeted actions across priority districts in the state.
The National AIDS Control Organization known as NACO held a special workshop called Suraksha Sankalp Karyashala in Hyderabad on 25th March. The workshop was part of its national program Mission AIDS Suraksha aimed at strengthening the fight against HIV at the district level. The workshop was chaired by Dr. Rakesh Gupta, Director General of NACO. Dr. Sangeeta Satyanarayana, Mission Director of the National Health Mission Telangana, also took part. Telangana is one of the key states in India's HIV response. The state has over 1,56,000 6,000 people living with HIV and 19 districts have been identified for special focus and action. Dr. Rakesh Gupta stressed that district-level planning, data-driven action and strong monitoring are essential to achieve national targets in controlling HIV.
Out of 33 districts of Telangana state, we have 90 priority districts which have been identified basis their high incidence, prevalence, the number of high-risk group people and the person living with HIV. So what we see in Telangana is the high number of priority districts in Telangana, and in HIV AIDS we talk about four important targets.
District collectors, medical officers and AIDS control officers from all 19 priority districts participated actively. Each district team presented its performance, shared field changes and prepared specific action plans. The workshop focused on improving HIV testing, treatment and care, especially for vulnerable communities. Saptagiri for Parikrama, Akashwani News, Hyderabad.
सायरा, अगर हम बात करें तो अगर आपको मैराथन में जाना हो और आपको पैसे भी मिल रहे हो तो क्या आप ज्वाइन करेंगी?
बिल्कुल, हमें लगता है पैसे मिले ना मिले, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड एटलीस्ट टेक पार्ट इन मैराथन. जीत और हार तो ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए, बट इन फ्रॉम एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी गुड टू यू नो टेक पार्ट इन मैराथन.
हमारे पास जो अभी हमारी स्टोरी है वो काफी खास है क्योंकि इसमें आपको दौड़ने के पैसे भी मिल रहे हैं. जम्मू अपने पहले इंटरनेशनल हाफ मैराथन के लिए कल लगभग 4,000 धावकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रतिभागियों के लिए एक बेहतरीन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं. यह आयोजन जिसमें पुरस्कारों की एक बड़ी राशि रखी गई है, खेल पर्यटन के प्रति इस क्षेत्र की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है. जम्मू के इस पहले हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ श्रेणियां शामिल होंगी और विजेताओं के बीच कुल 1.33 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
टूरिज्म को बढ़ावा देने और फिटनेस गतिविधियों में आम लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग जम्मू कल रविवार को हाफ मैराथन का आयोजन करने जा रहा है. मैराथन के लिए अभी तक 3,663 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है, जिनमें 91 अंतर्राष्ट्रीय धावक शामिल है. जम्मू के MA स्टेडियम से शुरू होने वाली इस मैराथन में 3 श्रेणियां रखी गई है. स्थानीय प्रतिभागियों के लिए विशेष पुरस्कार रखे गए हैं. आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना.
And well, the Under-23 Tri-Nation Football Championship 2026 is being held at the Golden Jubilee Outdoor Stadium in UPA of Arunachal Pradesh, featuring India, Tajikistan and Bhutan. Let's hear more from our correspondent.
The Under-23 Tri-Nation Football Championship 2026 is being held at the Golden Jubilee Outdoor Stadium in UPA of Arunachal Pradesh and will continue till 31st March. The much-anticipated championship is witnessing exciting clash of emerging football talents as the national Under-23 teams of India, Tajikistan and Bhutan are battling it out on the international stage. The championship was inaugurated by Chief Minister Pema Khandu on 25th March. The inaugural ceremony was graced by India's football icon and former Captain Sunil Chhetri, along with Sports Minister Kento Jine. Addressing the gathering, the Chief Minister announced that a much-needed world-class football stadium at Itanagar has been sanctioned under the Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region at an estimated cost of Rs 200 crore. He stated that construction work is set to commence within this year. He further highlighted the government's continuous efforts towards strengthening sports infrastructure and nurturing sporting talent across the state. Speaking on the occasion, football icon Sunil Chhetri encouraged the youth to take sports seriously and strive for excellence. The opening match of the tournament on 25th March was won by Tajikistan against Bhutan by 1-0. The next match is scheduled for today, 28th March, featuring India against Bhutan at 7 p.m. During a press briefing, the India National Under-23 football team, powered by promising talents from across the country, particularly the Northeast, aimed to put up a strong performance in the tournament. Head coach Noshad Musa expressed confidence in his squad's preparation and highlighted the importance of consistency and teamwork. Team captain Lalrin Liana Namte echoed similar sentiments, stating that the players are focused and determined to deliver their best on home soil. Meanwhile, the Bhutan National Under-23 football team, one of the youngest squads in the competition, is eager to make its mark internationally. Head coach Chencho Dorji expressed optimism about the team's growth and exposure, noting that such such tournaments are crucial for development. Captain Pema Zangpo said the players are excited about the opportunity and are ready to give their all on the field. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
गोवा से संवेदनशीलता पर एक खास कहानी लेकर आए हैं हम आपके पास। गोवा में पहली बार कैरिटास सेलिगाओ में दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित एक अनोखे सेंसरी गार्डन का उद्घाटन किया गया है। एक मल्टी सेंसरी लर्निंग स्पेस के तौर पर डिजाइन किया गया ये गार्डन स्पर्श, ध्वनि, गंध और गति के माध्यम से समावेशन को बढ़ावा देता है। एक रिपोर्ट।
The newly opened sensory garden at Caritas Goa offers a vibrant and carefully designed environment where children can explore freely and safely. A standout feature is the sound wall, allowing children to feel vibrations and auditory feedback. Interactive activity panels encourage hands-on learning, while textured pathways and specialized flooring support motor skill development. Curated plant zones add another dimension. Edible plants introduce experiential learning, while fragrant flowers stimulate the sense of smell. Structured greenery provides both visual contrast and tactile engagement. The space is especially designed for children with deaf blindness, helping reduce communication barriers through sensory interaction. The initiative, supported under CSR by Frontline Managed Services, a global leader in managed services and security consulting, aims to promote inclusive, child-friendly spaces across Goa. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
And the assembly elections in Kerala, Puducherry and Assam will be held on 9th of April, while counting of votes will take place on May 4. As part of our special series on constituency profiles, we now take a closer look at the Thattanachavadi Assembly constituency in Puducherry.
Thattanachavadi, a general assembly constituency in Puducherry, is witnessing a keen contest in 2026 assembly elections. Established in 1974, Thattanachavadi lies within Puducherry city limits and comprises a diverse electorate of industrial workers, traders, government employees, migrant workers and service sector professionals. Issues such as employment, job security, labor welfare, infrastructure, housing and traffic dominate the electoral discourse here. The constituency has a total electorate of 26,603 voters, including 12,428 male voters, 170 female voters and 5 transgender voters. A total of 31 polling booths have been set up in the constituency. In 2021, the incumbent Chief Minister N. Rangasamy of All India NR Congress won from this constituency by a margin of 5,456 votes. He secured 12,978 votes with a vote share of 55.02%. Communist Party of India candidate K. Sedu, who came second, polled 7,522 votes with a 31.89% vote share. 10 candidates are on the fray this time. The key contest is between Chief Minister N. Rangasamy and Congress MP, PCC President and two-time former Chief Minister V. Vaithilingam. Other candidates include K. Kadireshan of Patali Makkal Kachi, S. Karthi Kumari of Nam Tamilal Kachi, E. Vinayagam of Neyam Makkal Kazhagam, along with 5 independents. Neyam Makkal Kazhagam is contesting in alliance with actor Vijay's Tamilaga Vitri Kazhagam. Notably, K. Sedu, who was a runner-up in 2021 elections, is also contesting as an independent. N. Rangasamy, a former Congress leader, had earlier won from this constituency on Congress ticket in 1991, 1996, 2001, and 2006. After founding the All India NR Congress in 2011, the party retained the Thattanachavadi seat in 2011 and 2016 through Ashok Anand. As campaigning intensifies, political parties and independents are making all-out efforts to win this crucial constituency. Bibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट का 19वां संस्करण आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे से शुरू होगा। अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
द मार्च 1943, अ लीडिंग एक्टिविस्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी सत्यमूर्ति इज रिगार्डेड एज द मेंटोर ऑफ मद्रास स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड भारत रत्न के कामराज।
Satyamurthy was born on the 19th of August 1887 in Puddukottai in Tamil Nadu. A lawyer by profession, Satyamurthy was attracted to the national movement from an early age and joined the Indian National Congress. In 1919, he was chosen by the Congress as its representative to Britain to protest the Rowlatt Act and the Montagu-Chelmsford reforms.
आज पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों में विशेष पहचान बनाने वाले मधुर गीतों के रसिक संगीतकार एस एन त्रिपाठी की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक संगीतकार के रूप में की और बाद में अभिनेता तथा निर्देशक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। उन्होंने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। उन्होंने दुर्गा पूजा, बजरंग बली, रामलीला जैसी फिल्में की। उनके द्वारा संगीतबद्ध किया गया जय हिंद गीत फिल्म मानसरोवर से है, जिसके बोल जय हिंद है, काफी लोकप्रिय भी हुआ ये गीत। आइए सुनते हैं।
वो हिंद जिसके बाद का हिमालय पहरेदार है।
Srinath Tripathi or S.N. Tripathi's multifaceted work range included being a composer, writer, actor and director of films. His debut film as an independent composer was Chandan in 1942, and he was the first composer to make use of the slogan Jai Hind in a song in films, and to apne bugana justice suna Mansarovar se. However, he gained popularity as an actor also when he started playing the role of Hanuman in mythological and religious films. He turned to direction in 1957, starting with Rani Roopmati. Two of his films with Nirupa Roy and Bharat Bhushan, Rani Roopmati and Kavi Kalidas, are cited as having cinematic merit and unforgettable music. One more song from Kavi Kalidas.
जुग की है प्यार, ये तो जुग जुग की है प्यार, जिसे भवदा बुझाए कली कली पास जाए, करे पूरी अधूरी हो आस, ये तो।
Today is Munmun Sen's birthday. Credited a very credited actress and even known for her works in Hindi, Bengali, Malayalam, Kannada, Telugu, Tamil and Gujarati films. She eventually starred in Hindi cinema as well and appeared in 60 films and 40 TV series. She has received the Andhra Pradesh State Nandi Award for Best Supporting Actress in 1987 for her role in the film Siri Vanilla. And she was born in Calcutta. But एक बहुत ही known बंगाली गीत है, वो सुनते हैं।
आज जानी मानी भारतीय चित्रकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा की पुण्यतिथि है। एम एफ हुसैन, एस एच रजा और के एच आरा आदि के साथ एफ एन सूजा भी प्रोग्रेसिव आर्ट्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी के वे पहले ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्हें पश्चिम में बहुत पहचान मिली। उन्हें उनकी आविष्कारी मानव आकृतियों के लिए भी जाना जाता है।
अगर ये म्यूजिक सुनी है तो किसकी एंट्री होती है, आई थिंक सभी को पता है,
अक्षय खन्ना।
यस, अक्षय खन्ना की एंट्री हो चुकी है बिकॉज इट्स हिज बर्थडे टुडे। एन एक्टर हु प्रेडोमिनेंटली वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स, नोन फॉर हिज एक्टिंग वर्सटिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल्स, ही हैज अपीयर्ड इन ओवर 40 फिल्म्स। और धुरंधर की इस ट्रैक ने तो सच में उनकी री एंट्री करवा दी है वीकेंड से।
जी हाँ, अक्षय खन्ना ने धुरंधर में अपनी अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस से वो पॉपुलैरिटी हासिल की जो उन्हें जीवन में कभी नहीं मिली। अक्षय का फिल्मी करियर 30 साल का है। इतने लंबे करियर में उन्होंने रोमांटिक, कॉमिक और नेगेटिव रोल भी निभाए। और सर, साल 1957 में आई फिल्म में से उन्होंने डेब्यू किया था और इसी साल उसके बाद बॉर्डर रिलीज हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। और उन्होंने दृश्यम 2 और सेक्शन 375 में भी काफी अच्छा रोल निभाया था।
बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज अनफॉरगेटेबल रोल इन द फिल्म ताल, एंड उसका क्यों ना ये प्यारा सा गीत सुने और उसी के साथ हम लोग फिर विदा कर देंगे।
जी
पास है।
बताऊं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।